अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मां मनभीप्सुमन्धम् कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आज आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के 15वें अध्याय का 18 और 19 नंबर का श्लोक 17, 18, 19। 17 का अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं श्लोक। श्री अंगिरा उवाच अहम ते पुत्र कामस्य पुत्रदोष्म्यंगिरा नृप एषा ब्रह्मसुतः साक्षात नारदो भगवान ऋषि। अंगिरा ने कहा हे राजन जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। दरअसल वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था। ये जो तुम्हारे पास हैं भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि नारद हैं। अब आवृत्ति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतदर्हम् अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्तौ इह आवाम प्राप्तौ आवाम इह प्रभो प्राप्ता वावमिह प्रभो ब्रह्मण्य भगवत भक्तः न अवसादितुम अरहसि नावसादितुम अरहसि इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुष्तरे अतदर्हं मनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वावमिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसादितुमर्हसि इत्थम् इस प्रकार त्वाम तुमको पुत्र शोकेन अपने पुत्र के शोक के कारण मग्नम डूबे हुए तमसी अंधकार में दुस्तरे न पार कर सकने योग्य अतद अरहम तुम जैसे पुरुष के लिए उपयुक्त नहीं है। अनुस्मृत्य स्मरण करके महापुरुष श्री भगवान गोचरम जो ज्ञान संपन्न है अनुग्रहाय अनुग्रह करने के लिए भवतः आपके ऊपर प्राप्तौ आए हैं आवाम हम दोनों इह इस स्थान पर प्रभो हे राजन ब्रह्मण्य जो परम सत्य को प्राप्त हैं भगवत भक्त श्री भगवान का उच्च भक्त न नहीं अवसादितुम शोक करने के अरहसि योग्य हो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद हे राजन तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए आए हैं जो आपके अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। तात्पर्य इस श्लोक में कई शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। महापुरुष का अर्थ सिद्ध भक्त तथा भगवान दोनों हैं। महा का अर्थ है परम तथा पुरुष का अर्थ है पुरुष या व्यक्ति है। जो व्यक्ति श्री भगवान की निरंतर सेवा करता है वह महापौरुषिक कहलाता है। सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित को कभी कभी महापौरुषिक कहा गया है। उन्नत भक्त को चाहिए कि वह परम भक्तों की सेवा करते रहने की कामना करे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है तादेर चरण से भी भक्त सने वास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। भक्त को चाहिए कि परम भक्त की संगति में रहने की सतत अभिलाषा करे और परंपरा अनुसार ईश्वर की सेवा में संलग्न रहे। मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन के परम गोस्वामियों के उपदेशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार करे। यह तादेर चरण से भी कहलाता है। गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते हुए भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्त सने बास, भक्त का यही कार्य है। भक्त को न तो लाभ की कामना करनी चाहिए न हानि पर शोक करना चाहिए। जब अंगिरा ऋषि तथा नारद ने देखा कि परम भक्त महाराज चित्रकेतु तो अज्ञान के अंधकार में गिर गया है और अपने पुत्र के भौतिक शरीर के लिए शोक कर रहा है, तो वे अहैतुक अनुग्रह बस उसे उपदेश देने पधारे जिससे वह इस अविद्या से बच सके। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्मण्य है। कभी कभी भगवान की प्रार्थना में नमो ब्रह्मण्य देवाय के रूप में संबोधन किया जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर को नमस्कार, क्योंकि भक्त लोग उसकी सेवा करते हैं। अतः यह श्लोक बताता है ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावसादितो मरहसि। यह परम भक्त का लक्षण है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। एक परम भक्त तथा स्वरूप सिद्ध भक्त को हर्ष या शोक करने का कोई कारण नहीं, वह तो सदैव बद्ध जीवन से परे है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग श्रीमद्भागवतम में चित्रकेतु जी का प्रसंग पढ़ रहे हैं। आप लोग कथा अंश से परिचित हैं। वृत्रासुर के भक्ति को देह करके, उसके चेतना को देह करके परीक्षित महाराज प्रश्न कर दिए, युद्ध भूमि में अपने विपक्षी से लड़ते हुए, असुर से लड़ते हुए नहीं, अपने विपक्षी से लड़ते हुए और आसुरी योनि में होने पर भी इस प्रकार की चेतना है, इस तरह की भक्ति है, और इसके पीछे क्या कारण है? इसी प्रश्न के उत्तर के क्रम में वे वृत्रासुर के पूर्व जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बतला रहे हैं कि एक सार्वभौम राजा थे, सारे पृथ्वी पर उनका अधिकार था, लेकिन उनको कोई संतान की प्राप्ति न थी। संतानिकह, ऐसी बात नहीं थी कि वे संतान उत्पन्न करने में असक्षम थे। संतानिकह का अर्थ है कि संतान उत्पन्न करने में वे सक्षम थे, उनमें कोई शारीरिक कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे संतान नहीं प्राप्त कर सके। इसके लिए प्रयास बहुत किए, 1 करोड़ विवाह किए। यह दिखाया गया है कि दुर्भाग्य की यह सीमा हो सकती है। कभी कभी छोटी छोटी विफलता पर हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं, लेकिन चित्रकेतु महाराज के जीवन से आप सीख सकते हैं कि दुर्भाग्य की सीमा कहां तक जा सकती। 1 करोड़ विवाह किए लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संयोग से भ्रमण करते हुए अंगिरा ऋषि उनके पास आ गए। वे अंगिरा जी का सत्कार किए, उनको आसन दिए, सब प्रकार की सुविधा प्रदान करके अंगिरा जी के नीचे भूमि पर बैठ करके भूमि पर बैठ गए। चक्रवर्ती राजा हैं, लेकिन सीधे भूमि पर बैठ गए। इससे आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति उनकी कैसी भक्ति है। और यद्यपि अंगिरा जी सब कुछ जानते थे, लेकिन वे खुद पूछने लगे कि सब तरह से तुम ठीक हो ना। जो राजा के अंग होते हैं छह प्रकृति, सब ठीक है ना। तुम्हारे पुत्र अमात्य मंत्री ये बसवर्ती है ना। और कह रहे हैं कि जिसके पुत्र अमात्य मंत्री उसके बस में होते हैं तो वह राजा शांति का अनुभव करता है। और अंततः सिद्धांत दे रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका मन अपने बस में है वही शांति का अनुभव करता है। तो ऐसे विकल्प कर रहे हैं और अपने से कह रहे हैं कि ऐसा हमको लग रहा है कि तुम किसी कामना को प्राप्त नहीं कर सके हो, तुम असंतुष्ट दिख रहे हो। तुम्हारे मुख के लक्षण से मैं समझ रहा हूं कि तुम कुछ अभाव अनुभव कर रहे हो। और जब ऐसे कहे तो चित्रकेतु महाराज कहने लगे कि अरे आप तो क्या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बतला रहा हूं कि हम पुत्र के अभाव में बहुत दुखी हैं। यद्यपि जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि प्रकृति इत्यादि आपके अनुकूल है ना, तो वो सब ठीक है, लेकिन पुत्र के अभाव में ये राज्य की कोई भी सुविधा हमको अच्छी नहीं लग रही। उदाहरण दे रहे हैं कि छोत्रिट इवेतर, जैसे किसी को बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, और उसको खूब सुविधा प्रदान कीजिए, पानी मत दीजिए, भोजन मत दीजिए, उसको खूब अच्छा आसन दीजिए, खूब अच्छा वस्त्र दीजिए, तो उसे वो संतुष्ट नहीं होगा। वो अंगिरा जी से कह रहे हैं चित्रकेतु कि हमको सब सुविधा है, लेकिन पुत्र के अभाव में हम शांति अनुभव नहीं कर रहे, और कोई उपाय कीजिए कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे हम नरक को पार कर जाए। हमें भय है कि पुत्र के अभाव में हम अपने पितरों के सहित नरक में गिर सकते हैं। बहुत आग्रह किए तो अंगिरा ऋषि उनसे एक यज्ञ कराए, और यज्ञ करा करके और उस चरु को कृतद्युति को खिलाने के लिए दिए। और वर्णन किया गया है कि प्रासनाद एव कृतद्युति, जो ज्येष्ठा श्रेष्ठा उनके सब पत्नियों में ज्येष्ठ थी, मतलब सबसे पहले उस पत्नी से विवाह हुआ था कृतद्युति से, और श्रेष्ठ भी थी, गुण में भी श्रेष्ठ थी। अब एक अनुमान कर सकते हैं उसके व्यक्तित्व का, कृतद्युति भी एक अर्थ होगा कि जो प्रकाश कर दे। तो रूप गुण सब तरह से वह संपन्न थी, और उसको वह चरु दिए, खीर दिए, और शापी तत्प्राशना देव चित्रकेतो रधारयत गर्भम कृतद्युति देवी कृताग्ने रिवात्मजम। और उस खीर का प्रभाव हुआ कि वह गर्भ धारण कर ली। एक उदाहरण दे रहे हैं कृताग्ने रिवात्मजम, जैसे कृतिका अग्नि के गर्भ को, अग्नि के बीर्ज को गर्भ में धारण के, अग्नि के पुत्र को गर्भ में धारण की, वैसे कृतद्युतु चित्रकेतु चित्रकेतु के बीर्ज को धारण की और गर्भवती हो गई। तो उदाहरण महत्वपूर्ण है, कृतकाग्ने रिवात्मजम, जैसे कृतिका अग्नि के बीर्ज को धारण की। पुराणों में एक प्रचलित कथा है कि एक बार देवता लोग असुरों से बहुत परेशान थे, त्रस्त थे, असुर उनको बहुत तंग कर रहे थे। वो अपने दुख को ब्रह्मा जी से निवेदित किए कि हम असुरों से बहुत त्रस्त हैं, कोई उपाय बताइए। और ब्रह्मा जी कहे कि यदि महादेव जी, शिव जी पार्वती जी से पुत्र उत्पन्न करें तो वह तुम लोगों का सेनानायक बनेगा और तुम लोग असुरों के भय से, उनके त्रास से मुक्त हो सकते हो, उनके भय से तुम लोग मुक्त हो सकते हो। लेकिन शिव जी को पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। और इंद्र शिव जी से प्रार्थना किए कि आप एक पुत्र उत्पन्न कीजिए। और इंद्र को अब इतना कौतुक था, उतावला था कि अग्नि देव को नियुक्त कर दिया कि आप इस दंपति को देखिए कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए उद्यत हो रहे हैं कि नहीं, कब पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो अपने कौतुक वश, त्वरा वश अग्नि देव को नियुक्त कर दिए। और पार्वती जी, शिव जी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और अग्नि देव छिप करके देख रहे थे कि पुत्र उत्पन्न करने के इच्छुक हैं कि नहीं। एक दिन की बात है कि शिव और पार्वती दाम्पत्य जीवन में थे, वे पुत्र उत्पन्न करने के इच्छुक थे, संग कर रहे थे, और तब तक छिप करके अग्नि देव वहीं थे। अब पार्वती जी को जो पता चला कि यहां कोई दूसरा व्यक्ति है तो वे रति क्रीड़ा से विरत हो गई, वे हट गई लज्जावश कि कोई दूसरा यहां देख रहा है। अब शिव जी में वीर जी का वेग था, शिव जी भी विरत हुए लेकिन अपने वीर जी के वेग को तो रोक नहीं सकते। तो जहां अग्नि का पात्र था तो उसी में अपने बीर्ज का आधान कर दिए, बीर्ज को उसी में रख दिए। अब शिव जी के बीर्ज का यह प्रभाव है कि अग्नि देव उसको सहन नहीं कर सके। देखिए शिव जी की महिमा काफी है, वे विचित्र व्यक्ति हैं, अग्नि कितना तेजस्वी है लेकिन फिर भी शिव जी के वीर्य को नहीं सह सका। दूसरे को जलाने वाला है अग्नि, लेकिन शिव जी के वीर्य के प्रभाव से खुद ताप अनुभव करने लगा और घबरा करके जाकर के गंगा जी में कूद गया। और गंगा जी में जब अग्निदेव कूदे तो शिव जी का वीर्य गंगा जी पर तैरने लगा, गंगा जी पर चला गया। और उसी समय गंगा जी में कृतिका ग्रुप की स्त्रियां, कृतिका देवताओं की स्त्री हैं, उनका गण है, तो वे स्नान कर रही थी। छह स्त्रियां स्नान कर रही थी, छह कृतिका। और शिव जी का वीर्य गंगा जी के जल में था तो वे खड़ा होकर के गंगा जी में खड़ा थी स्नान के लिए। तो गंगा जी के तरंग से वह वीर्य कृतिकाओं के जोनी में चला गया और छह कृतिका थी तो छह गर्भवती हो गई। अब स्नान करने गई थी और उसी समय उनको अब यह लक्षण दिखने लगा कि हम गर्भवती हो गई, तो वो अब थोड़ा दूसरे ढंग का अनुभव करने लगे। तो जा करके अपने गर्भ को वे गिरा दी वो सर मैंने सरकंडा के वन में। और उतने देर में ही जो गर्भ था तो उसमें मुख तो प्रकट हो गया था। ऐसे भी गर्भ का अब वर्णन सुनेंगे तो सबसे पहले सिर आता है, तो मुख की आकृति बन गई और शरीर के अंगों की आकृति नहीं बनी थी। लेकिन छह कृतिका अपने गर्भ को मुंज के वन में गिरा दी तो वैसे वो छह गर्भ था, बढ़ नहीं रहा था, लेकिन फिर छवों मिल करके एक शरीर में वृद्धि प्राप्त की और तब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो ये जन्म की कथा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो उदाहरण दे रहे हैं कि कृतिकाग्ने रिवात्मजम, जैसे कृतिका बहुत आसानी से गर्भ धारण कर ली, समझ रहे ना, पानी पर वीर्य तैर रहा है और योनि में प्रवेश करने से गर्भवती हो गई। और उसी तरह ये राजा चित्रकेतु और कितना कितना प्रयास किए होंगे गर्भ धारण के लिए, गर्भ आधान के लिए, लेकिन कृतद्युति गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं हुई। लेकिन सापि तत्प्रासनाद देव, लेकिन अंगिरा ऋषि जो चरु प्रदान किए थे, खीर प्रदान किए थे, वो इतना प्रभावशाली था कि उसके भक्षण मात्र से उसकी यह क्षमता हो गई कि बहुत आसानी से गर्भ धारण कर ली। अब गर्भ है धारण किए और गर्भ है बढ़ने लगा, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा में वृद्धि होती है, वैसे वो गर्भ बढ़ने लगा और पुत्र को वो जन्म दी। लेकिन अब परिणाम यह हुआ कि वह पुत्रवती हो गई, पुत्र से स्नेह होने के कारण चित्रकेतु का स्नेह कृतद्युति में बढ़ गया, स्वाभाविक पुत्र के स्नेह बस उसके पास रहने लगे। और दूसरे जो पत्नियां थी उनको ईर्ष्या हो गई, यद्यपि वे दूसरे पत्नियों की उपेक्षा नहीं कर रहे थे, चित्रकेतु महाराज के पक्ष में कोई त्रुटि नहीं था, स्वाभाविक ही पुत्र के स्नेह से कृतद्युति के पास अधिक रहते थे, लेकिन दूसरी जो सौते थे इसको सहन न कर सकी। और वे अपना एनालिसिस की विश्लेषण की कि यह पुत्र के चलते ही कृतद्युति के पास अधिक रहता है, और इसलिए वे पुत्र को विष दे दी, पुत्र मर गया। यद्यपि वो विष दी तो तुरंत मृत्यु नहीं हुई, विष का प्रभाव हुआ कि आंख बंद हो गया, आंख बंद हो गया। वो ऐसे वो पड़ा था लड़का, तो दूसरे लोग यही समझ रहे थे कि सो रहा है, तो धात्री भी कृतद्युति भी उसको छोड़ दी, बच्चा सो रहा है सोने दो। लेकिन जब बहुत देर हो गई तब कृतद्युति अपने दासी को धात्री को कही कि पुत्र को लाओ, बहुत देर हो गई। और वह गई तो देखे कि पुतली उल्टा हुआ है, तो वह तो वहीं छाती पीटने लगी। अब छाती पीट रही है, रो रही है, इस आवाज को सुनते तो अब कृतद्युति गिरते भराते वहां गई, उसके बाल खुले हुए थे, और वहां जाकर के पुत्र की स्थिति को देखे तो वो तो बहुत रोने लगी। अब उसके रुलाई को सुन करके दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए, और राजा भी अब वहां पहुंचा और वह बहुत दुखी हुआ। चित्रकेतु का वर्णन है, चित्रकेतु भृशम तप्त मुक्त कंठो रोदह, वो तो इतना दुखी हुआ कि फूट फूट करके रोने लगा। और एवं कश्मल मापन्नम नष्ट संज्ञम मनायकम, अरे कुछ देर तक तो ऐसे रो रहा था, कुछ देर के बाद यह स्थिति हो गई कि नष्ट संज्ञम, उसकी चेतना ही लुप्त हो गई, एकदम मूर्छित हो गया। वो तो कभी कभी मूर्छित होकर के गिर जाता था, कभी कभी फूट फूट करके रोता था। वो कह रहे हैं कि नष्ट संज्ञम अनायकम, इस स्थिति में है चित्रकेतु, लेकिन उनको समझाने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। ओ अंगिरा ऋषि को दया आई और नारद जी को लेकर के चित्रकेतु के पास आए, नारद जी को लेकर के आए, इसलिए कि मान लीजिए कि हम सक्षम नहीं होंगे। अंगिरा जी सोच रहे हैं कि चित्रकेतु के दुख को, उसके शोक को, इसके मुख मोह को दूर करने में शायद हम नहीं सक्षम होंगे, तो अंगिरा जी उसके मोह को दूर कर देंगे, नहीं नारद जी उसके मोह को दूर कर देंगे, तो तो इसलिए नारद जी को साथ में लेकर के आए। वहां आने पर तो लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि राजा बहुत दुखी है। राजा का वर्णन किया गया है कि पतितः मृतको पांते, वो जो बच्चा मरा हुआ था उसके नजदीक वो गिरा हुआ था, मृतको पमम, और यही लग रहा था कि अभी मर ही गया, एकदम चेतनाहीन होकर के गिर गया था, मूर्छित हुआ था, बीच बीच में उसको चेतना आती भी थी। तब अंगिरा जी उसको समझाने लगे। अंगिरा जी उससे पूछे, कह रहे जिसके लिए शोक कर रहे हो ये तुम्हारा क्या लगता है, क्या संबंध है इससे, और क्या संबंध है, ये तो प्रकट है कि हम जन्म दिए हैं तो हमारा पुत्र हुआ। लेकिन अंगिरा जी कह रहे हैं कि अरे संसार में तो ये चक्र घूमता रहता है, कभी कोई किसी का पुत्र बनता है, कभी पिता भी बनता है, तो इस समय क्या संबंध है। और ऐसे कई एक तरह से अंगिरा जी समझाने का प्रयास किए और चित्रकेतु को ज्ञान होने लगा और वे बतलाने लगे कि देखो तुम्हारा जो शोक है वो निराधार है, शोक का कोई आधार नहीं है, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। वो चित्रकेतु कह सकते थे कि अरे ये हमारा पुत्र है, हम इसको जन्म दिए हैं और इसका वियोग हो गया तो शोक तो होगा ही। वो कह रहे हैं कि ना देखो तुम्हारी ये जो भावना है कि तुम जन्म देने वाले हो यही निराधार है, सच्चाई यह है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म देने वाला केवल माता पिता नहीं है, वो जन्म देने वाले तो भगवान है, तो वही जन्म देते हैं और वही पालन करते हैं और वही किसी भी व्यक्ति को नष्ट करते हैं। तो जन्म देने वाले, पालन करने वाले, नष्ट करने वाले भगवान हैं। तुम्हारी जो ये अहमति है या जो भावना है, ये अहंकार है कि मैं जन्म देने वाला हूं, यह निराधार है। और कई एक तरह से अंगिरा ऋषि जब उपदेश दिए तो चित्रकेतु का शोक दूर हो गया। देखिए भक्तों के वचन का प्रभाव आता है, वैसे प्रभाव आता है जैसे कोई रोग से तप्त है तो दवा का प्रभाव आता है। अंगिरा जी के उपदेश से चित्रकेतु का शोक दूर हो गया। चित्रकेतु के शोक का आप अनुमान कर सकते हैं कि इतना वो दुखी था कि एकदम मरे जैसा पड़ा था और मुक्त कंठ रोध फूट फूट करके रो रहा था। लेकिन अंगिरा ऋषि के वचन का प्रभाव हुआ कि उसका शोक कम हुआ, दूर हो गया। यह कोई आश्चर्य नहीं है, ये भक्तों के वचन का प्रभाव होता है। आप जब जट भरत जी के रहुगण के बात सुनते हैं तो रहुगण अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम सत निदाग दग्धस्य यथा हिमाम भ कुदेह माना ही विदस्त दृष्टे ब्रह्मन बचस्ते मृत मौसधम में। वे अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे किसी को खूब तेज बुखार है, ज्वर रोग है और उसको सत पोटेंट मेडिसिन दे दिया जाए, सही औषधि दे दिया जाए तो बुखार से तुरंत रिलीफ महसूस करता है। और निदाग दग्धस्य यथा हिमाम भ, जैसे खूब हौल है, खूब गर्मी है और व्यक्ति को गंगा जी का जल मिल जाए हिमालय में तो उससे ताप को वो दूर कर लेता है, शांति अनुभव करता है। तो कुदेह माना ही विदस्त दृष्टि ब्रह्मन बचस्ते मृत मौसधम में। राहुगण कह रहे हैं कि हम तो देहाभिमान से ग्रसित हैं तो हमारे रोग के लिए आपका वचन अमृत के समान है। अमृत इस अर्थ में कि साधन काल में भी यह सुखद है और इसका परिणाम भी सुखद है। तो हम यह कह रहे हैं कि भक्तों के वचन का प्रभाव आता है, चित्रकेतु बहुत शांति अनुभव करने लगे, दुख उनका दूर होने लगा, तो परिचय पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं, हम मारा उद्धार कर रहे हैं, दुख के समुद्र से निकाल रहे, आप हैं कौन। मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आप कोई ऋषि हैं, बहुत सारे ऋषियों का वे नाम ले रहे हैं कि व्यासदेव, मार्कंडेय जी और असित, देवल, अंगिरा, नारद, ये सब लोगों के दुख दूर करने के लिए, शोक दूर करने के लिए घुमा करते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि उसी में से आप कोई हैं, आप कौन हैं। तो इस प्रकार जब ये प्रश्न किए तब अंगिरा जी कह रहे हैं कि अहम ते पुत्र कामस्य, पुत्र दो अस्मि अंगिरा नृप, कहें कि हे राजन, मैं वही व्यक्ति हूं जो तुमको पुत्र प्रदान किए थे, तुम पुत्र के इच्छुक थे, तो मैं तुम्हारे पास आया था, तुमको पुत्र प्रदान किया, तो वही मैं अंगिरा हूं और ये नारद जी हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र नारद हैं। और इत्थम त्वाम पुत्र शोके न मग्नम तमसि दुस्तरे, वे आप अंगिरा और नारद हैं तो आप लोग आ कैसे गए यहाँ, क्योंकि इत्थम त्वाम पुत्र शोके न मग्नम तमसि दुस्तरे, अतदरहम मनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम। ये हमारे आने का प्रयोजन यह है कि हम लोग ऐसा विचार किए कि महापुरुष गोचरम, तुम तो भगवान के भक्त हो, भगवान को ही अपने इंद्रियों का विषय बनाए हो, तो अतदरहम तुम्हारे लिए इस प्रकार का शोक उचित नहीं है, तुम इस प्रकार के शोक के योग्य नहीं हो, तो अनुस्मृत्य इस बात पर विचार करके हम लोग यहाँ आ गए हैं, अनुग्रहाय भवत, तुम पर कृपा करने के लिए, इस शोक से दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और संबोधन कर रहे प्रभु इस अर्थ में कि तुम योग्य हो, हमारे उपदेश को ग्रहण कर सकते हो, और सिद्धांत दे रहे हैं कि ब्रह्मांडो भगवत भक्तो नावसादे तुम अर्हसि, जो ब्रह्मांड हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनको इस प्रकार के शोक में नहीं पड़ना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यक्ति जब शोक में निमग्न रहेगा तो भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर सकता। तो महापुरुष गोचरम, अपने इंद्रियों का विषय भगवान को बनाए हो, जब तुम भक्ति में लगे हो तो इस प्रकार का शोक तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो भक्ति का सिद्धांत है, आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो रूप गोस्वामी भक्ति के अंगों का वर्णन कर रहे हैं और उसमें एक बात कह रहे हैं कि व्यवहारे प्यकार पुण्यम, व्यवहार में बहुत कृपण नहीं होना चाहिए, दीनहीन नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं कि अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने, अरे कि खाने का या रहने का साधन प्राप्त नहीं है, कोई कोई बहुत अभाव में होते, तो उस स्थिति में, या कभी कभी देखा जाता है कि साधन मिला है, नौकरी मिली है, ये बिजनेस है, लेकिन तब तक वो नष्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे घटना देखने को मिलती है कि एकदम नौकरी ठीक चल रहा है, काफी पैसा आ रहा है, तब तक कंपनी छटैया कर देती है। तो कह रहे कि उस स्थिति में अविक्लव मतिर्भूत्वा हरिरेव धिया स्मरेत, धिया स्मर हरिमेव धिया स्मरेत, उस स्थिति में भी व्यक्ति को अनुद्विग्न रह करके, अक्षुब्ध रह करके भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। और शोकाद्य वशवर्तिता, एक अंग बतला रहे हैं कि व्यक्ति को शोक क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए। व्यक्ति शोक और क्रोध के वश में हो जाएगा तो उस चित्त में भगवान की स्फुरणा कैसे होगी। जिस चित्र पर कब्जा शोक कर लिया है, क्रोध कर लिया है, तो भगवान के रूप गुण कहां उसमें स्फुरित होंगे। तो भक्त के लिए यह आवश्यक है कि शोक और क्रोध से अभिभूत न हो, उससे बहुत प्रभावित न हो। थोड़े देर तक प्रभाव आता है लेकिन उसी में डूब नहीं जाना चाहिए, अपने को दूर करना चाहिए। और जब तक व्यक्ति इस अवस्था को नहीं प्राप्त करेगा तब तक उन्नत भक्ति को नहीं वो प्राप्त कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी गीता का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो व्यक्ति न शोक में है न बहुत भारी कामना में है तो लभते परम, वही उन्नत भक्ति को प्राप्त करता है। तो जो सिद्धांत हो, यहाँ अंगिरा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नाव साधितु मरहसी। तुम ब्रह्मण्य हो, ब्राह्मणों के भक्त हो, भगवान के भक्त हो, तो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तो तुम बहुत भारी शोक समुद्र में डूबे हो, शोक में निमग्न हो, तो इसी पर विचार करके हम लोग तुमको शोक से दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। तो इस प्रकार अंगिराज अपना परिचय दे रहे हैं, नारद जी का परिचय दे रहे हैं। और राजा में चित्रकेतु राजा में और अंगिराज जी में और क्या बातें हो रही हैं, इसको हम लोग आगे के क्लास में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। प्रश्न कुछ ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।